اس کے بعد آگے ہے سورت طور، سبز پہاڑ کو کہتے ہیں، عبرانی لفظ ہے ہیبرو لینگویج کا. اس میں سب سے پہلے تو قیامت ہی ہے. وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ وَفِي رَقٍّ مَنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ. اتنی قسمیں کھا کر آگے جا کر کیا کہا جا رہا ہے؟ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا. اور جب وہ شروع ہو جائے گا تو مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، پھر اس جھٹکے کو، زلزلے کے، اور اس زمین کی تو ہل جلنے کو کوئی روک نہیں سکے گا. اللہ نے جب پکڑنا ہے لوگوں کو تو یہ ہوگا، تو یقیناً آخرت قائم ہو کر رہے گی، اور کسی میں یہ طاقت ہی نہیں کہ اسے برپا ہونے سے روک دے. بالکل جب اللہ نہ کرے گاڑی کا ایکسل ٹوٹ جاتا ہے، تو گاڑی جب الٹنا پلٹنا شروع ہوتی ہے تو کوئی نہیں روک سکتا. زلزلہ آتا ہے آج بھی تو کوئی روک نہیں سکتے، کوئی ہاتھ نہیں دیتا کہ رک جاؤ زمین کو. تو اسی طرح جب قیامت کے دھماکے ہوں گے، یوم تمور السماء مورا وتصیر الجبال سیرا اور والبحر المسجور، اوپر بھی کہہ دیا، تو کیا پتہ چلا کہ قیامت کو روک تو نہیں سکتے. جیسے آپ میں اپنے بڑھاپے کو روک نہیں سکتے، آنے والے وقت میں بیماریوں اور کمزوریوں کو روک نہیں سکتے، تو پھر تیاری کر لیجئے. پھر آگے سرداران قریش کے اس رویے پہ تنقید ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں وہ اختیار کیے ہوئے تھے. الذین هم فی خوض یلعبون، باتیں بناتے تھے. دیکھیے جو لوگ کچھ کام نہیں کرتے نا، وہ بڑی باتیں بناتے ہیں، مزے کی بات ہے. جو کچھ نہیں کرتے وہ بہت کچھ کرتے ہیں. کیسے؟ تبصرے، تنقید، مناظرے، مباحلے، اس کی بات، اس پہ. جیسے آپ دیکھیے کبھی دور میں میچ کبھی دیکھے ہو نا آپ نے، تو کچھ لوگ پھر بعد میں میچ پہ تبصرہ کرتے ہیں، اس کو ایسے وکٹ لگانی چاہیے تھی، اس کو ایسے بولنگ کرنی چاہیے تھی، اس نے یہ کیا وہ کیا. تو بیچارے کو جو بیچارہ کر رہا ہے اس کو نہیں پتہ. اسی طرح دیکھیے جو کام کر رہا ہوتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے کیسے کرنا چاہیے، اور جو دوسرے وہ تبصرے، ایسا نہیں ہو گیا، یہ نہیں ہو گیا. بس آپ دیکھیے گاڑی چلاتے ہوئے ڈرائیور کے سامنے ہر چیز ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے آگے ایک دم پتھر آیا، میں نے بریک لگانی ہے، اس نے بریک لگایا، کیا ہوا، کیوں کیا، ذرا دیکھ لینا تھا، ذرا مڑ لینا تھا. اسی طرح آپ جب قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ایک خاص رخ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسرے آپ کو کسی دوسرے اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو ذہنوں میں ریزنٹمنٹ آتی ہے نا، اس کا ذکر ہے. اللہ کے نبی کے اوپر برملا قسم کی تنقید تھی مکہ کے لوگوں کی، تو اسی پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ فکر نہیں کیجئے، ڈونٹ وری. پھر اس میں آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ایسے ہر دم لوگوں کو قائل کرنے کے لیے کوئی معجزہ دکھانا قطعی لا حاصل ہے. یعنی آپ ان کو معجزے دکھائیں گے تو کیا یہ آپ کو مان جائیں گے؟ یہ نہیں مانیں گے. ان تیلوں میں اب تیل ہی نہیں ہے، جس میں طلب نہیں، جس میں تڑپ نہیں، تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ ان کو کوئی معجزہ دکھایا جائے؟ چھوڑ دیجیے ان کے حال پہ. پھر اس کے بعد آپ کو ہدایت فرمائی گئی کہ آپ ان مشرکوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی دعوت کا کام جاری رکھیں، بس یہی کرنے کا کام ہے. فزک کرفمان تبھی نعمت ربی کبھی کاہن ولا مجنون، آپ اپنا کام کرتے رہیں. ام یقولون شاعر، یہ کبھی آپ کو شاعر کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی کاہن کہتے. اب اگر آپ نے ہر ایک کی بات سننی شروع کر دی کہ کس کی کیا مرضی ہے اور کس کو کیا پسند ہے، تو پھر وہی حال ہوگا جو آپ بچوں سے کبھی پوچھ لیں کہ بچوں آج کیا کھائیں گے، اور پھر کسی ایک کی بات مانی تو دوسرا ڈوٹے گا کہ میری کیوں نہیں مانی، اور پوچھا تھا تو پھر میرا مانا کیوں نہیں. تو بعض دفعہ بندے کو وہ کر لینا چاہیے جو اس کو لگے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے. اور پھر آخر میں یہ بھی کہہ دیا گیا، اطمینان دلایا گیا کہ اللہ نے آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ آپ کی مسلسل نگہبانی ہو رہی ہے. فَإِنَّ کبھی آیونینہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ. اور یہ چیز داعی دین کو بھی بہت سکون دیتی ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں، جس کے ساتھ اللہ ہوگا نا وہ کبھی تنہا نہیں ہوگا. آپ اللہ کی نظروں میں، یو آر بینگ واچڈ، کیمرے لگے ہوئے، سی سی کیمرے لگے ہوئے، سیکیورٹی کیمرے لگے ہوئے، کیا فکر ہے؟ آج چوروں اور مجرموں کو پکڑنے کے لیے کیمرے لگا دیے. اللہ کے نبیوں کو جب لوگ ستاتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے کیمروں سے سب دیکھ رہے ہوتے تھے. پھر ایسوں کو ایسا پٹکتے تھے نا کہ نبی بیچارے کو تو پتہ بھی نہیں کہ کون کیا کرتا ہے بعد میں، کون بھولا ہے اور کون بھولا ہے. وہ تو نہیں کسی پہ بدگمانی کرتے تھے، ان کو تو وہی دکھتا تھا جو لوگ سامنے آ کر بولتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ غیب سے پھر ایسے لوگوں کو پکڑتا تھا. اور آج بھی یہ اصول ہے سنت کے مطابق. اب دیکھیں آج انبیاء کرام تو نہیں، رسالت کا سلسلہ پورا ہوا، ہمارا ایمان ہے اس پہ، لیکن جب کوئی سچے دل سے اللہ کے رستے میں نکلتا ہے نا، اب لوگ اس کے بارے میں کچھ بھی کر دیں، کچھ بھی کہہ دیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ لگ جاتا ہے. آج صبح کی ہماری شیئرنگس تھی جب دورہ قرآن کی، تو سبھی بہت اچھی بات کرتے ہیں اپنے خیال کے مطابق. ایک سسٹر کی بات سن کے میں ہل گئی، کہنے لگیں کہ اب وہ کون تھی، کس ملک کی تھیں، ظاہر انہوں نے بتایا لیکن میں پرسنلی ان کو بالکل نہیں جانتی، कहने लगी कि आप जो बात कहती हैं ना, मुझे लगता है आप मुझे कह रही हैं, और मैं जो सोच के बैठती हूँ ना, आप उसका जवाब कैसे देती हैं कि मैं ये कहती हूँ कि आपको पता कैसे चल जाता है इन बातों का? तो ये मेरा काम नहीं है, ये अल्लाह का काम है। अल्लाह ताला ने इस कुरान के अंदर एक ऐसी ताकत रखी हुई ना, जिसको कहते हैं एक्सेस ले लेता है बंदा, जहन पकड़े जाते हैं, सोच पकड़ी जाती है, नज़रें कहाँ पकड़ी जाती हैं। एक ने कहा कि आपको कैसे पता चलता है कि हम थोड़े से इधर उधर होने लग जाते हैं, आप फ़ौरन जुमला बोल देती हैं, आप सीधे होके बैठे, आप ये करें वो करें। तो ये सारी बातें याद रखिए, वो है ना एक मालिक, लोगों को उन पर डालिए, जाहिर पे क्यास कीजिए और दुआ करें कि अल्लाह ताला आप मेरी हिफाजत करें, मुझे किसी गलत चीज़ में ना डालना और किसी भी ऐसे गलत मामले में ना मैं पड़ जाऊँ जो कल मेरे लिए रसवाई का जरिया हो। फिर इस बारे में से जो आयत आपके लिए चूज़ की गई, वो आयत नंबर 21 है, जन्नती घराना। अल्लाह ताला आपके मेरे घर वालों को जन्नत में आला जगह दे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे की वजह से जन्नत में आगे ले जाए जाएंगे। वल्लज़ीन आमनू वत्तबअतहुम हुम ज़ुर्रियतुहुम बीमानिन अलहक़ नबिहिम ज़ुर्रियतहुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीन आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, वत्तबअतहुम ज़ुर्रियतुहुम बीमानिन, फिर पैरवी की उनकी ज़ुर्रियत ने ईमान के साथ, यानी उनके पीछे लगे रहे, जो माँ बाप करते थे वही औलादें भी करने लगी। लेकिन कम हुई ज़्यादा हुई कोशिशें कोई बात नहीं, अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम वमालतनाहु मिन अमलिहिम मिन शैइन कुल्लु इमरिइन बिमा कसब रहीन। और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान में इनकी पैरवी की, हम इनकी औलाद को भी इनके दर्जे तक पहुँचा देंगे और इनके अमल में से कुछ कम न करेंगे। हर शख्स अपने अपने अमाल का गिरवी है, यानी एक दफ़ा सेम फ्लाइट ले लो, बाद में सीट चेंज कर लेंगे। ये तो अक्सर ही होता है, आप किसी के साथ कॉप करना चाहते हैं, वो कहते हैं ठीक है टिकट ले लें, आप जाके अंदर एयर होस्टेस से कहते हैं वी वॉन्ट टू सिट टूगेदर, वो कहते हैं इट्स ओके सिट डाउन नाउ, जब एक दफ़ा जहाज़ बंद होगा फिर आप चेंज कर लीजिएगा। कभी कभी लोगों को प्रोटोकॉल में फर्स्ट क्लास वाले के साथ भी बुला लिया जाता है, थोड़े से पैसे दीजिए आप भी आगे आ जाइए, कभी जस्ट जहाज़ का बैलेंस नहीं पूरा और आप लोग आगे आ जाइए। तो दुनिया में ये होता है तो आखिरत में क्यों ना होगा। दुआ कीजिए अल्लाह हमारी औलादों को हमसे आगे करे दीन में, कि हम उनकी वजह से आगे जाएं ना कि वो हमारी वजह से आगे आए। आगे है सूरत नजम, सितारे को कहते हैं और बूटियों को भी कहते हैं। पूरी सूरत में देखिए तो सितारे की बात है, क्योंकि आगे इसमें एक सितारे का जिक्र आ रहा है। अरब लोग एक सितारे शेरा की पूजा करते थे, उसका जिक्र है इसमें, शायद उसकी वजह से ये नाम है। तारीफ़ें तो इसकी बहुत और की गई, लेकिन आम चीज़ सीधी सी है कि इससे मुराद सितारा जो गिर पड़ा। आगाज़ में बताया जा रहा है कि जो अंधेरा तब अब ख़त्म हो गया है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आते ही सुबह हो गई। देखिए अंबिया कराम भी अंधेरों में रोशनी के चमकते हुए सितारे ही होते हैं, वो छोटे छोटे जुगनू तो आज भी लोगों को आपकी सूरत में आपको दिखेंगे जो हिदायत की तरफ बुलाते हैं। तो अंबिया कराम के आते ही दुनिया से अंधेरे दूर होते हैं। बस लोग कहते हैं यहाँ अल्लाह के नबियों की बात है और उनके सीनों की बात है, हम ज़ाहिर पे क्यास करते हैं। व नजमी ज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, अल्लाह के नबी पर जो बातें करते थे ना लोग, फिर उसका जिक्र है। अल्लाह ने गवाही दे दी, व मा यंतिक अनिल हवा, ये तो अपनी मर्ज़ी से कुछ बोलते ही नहीं, ये दूसरी बात है, और ना करते हैं वो जो आपका अपना दिल चाहे, तो वही करते हैं जो अल्लाह ने कहा, क्योंकि आप हर आन अल्लाह की निगरानी में। दुआ करें अल्लाह हमारी ज़ुबानों से भी बस वही निकाले जो वही के मुताबिक हो, और हमसे वही काम कराए जो वही के मुताबिक हो, पढ़ पढ़ा कर हम वही ना खड़े हों जहाँ आज से 5 साल पहले खड़े थे। फिर इसी तरह मुशरिकीन को समझाया गया कि जिस दीन की तुम पैरवी कर रहे हो, इसकी बुनियाद महज गुमान और मफरूजात पे है। इन हिया इल्ला स्मान समय तुमुहा अंतुम व आबाउकुम मान सल्लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, और बात यही यत्तबियुन इल्ला जन, तुम तो जन के पीछे लगे हो, वही बातें सपोज्ड बातें कच्ची बातें ढिलमिल बातें, तो ज़िंदगी के एक असूल लिखिए, आप बेहतरीन काम करना चाहते हैं कभी कच्ची बात ना करें, कभी कच्चे बंदे को कोई पक्का काम ना दे, और जब कोई आपको काम मिले तो उसको संजीदगी से लें, गैर संजीदगी के साथ जल्दी में थुलबलेपन में चुलबलेपन में कोई काम करना, बाद में परेशान होना, उससे बेहतर है कि 10 दफ़ा सोचो फिर बोलो। कहते थे पहले सोचो फिर बोलो, आज कहते हैं बोलते रहो, सोचने की ज़रूरत ही कोई नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर की चीज़ें बाहर आ जाएं। तो हमारे बड़ों की बातें बड़ी सच थी। अल्लाह ताला ने यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान की इतनी बड़ी गवाही दे दी, इससे बड़ा हदीस की सदाकत का क्या जवाब होगा। फिर इसके बाद मुशरिकीन को समझाया जा रहा है कि जिस दीन की तुम पैरवी कर रहे हो वो तो है ही गुमान, और दीन वही है जो हकीकत के मुताबिक हो, और हकीकत लोगों की ख्वाहिशों के ताबे नहीं होती। ये बात तो 100% सच है। अक्सरियत को खुदन अच्छी नहीं लगती। वमाता वाला अनफुस, हवा जो होती है ना, ये ख्वाहिश परस्ती है। बंदे का दिल तो यही चाहता है, सच्ची बात है। फितरतन बंदे का दिल होता है मुझे आज़ाद छोड़ दो, कोई क्वेश्चनेबल है, कोई सवाल पूछे गुस्सा आएगा, कोई किसी चीज़ की रिपोर्ट मांग ले तो बुरा लगेगा, शौहर ही कह दे ना इस महीने में जो पैसे दिए थे ज़रा लिख के दो किधर खर्च किए हैं, तो गुस्सा आएगा। बिल्कुल इसी तरह से आप देख लीजिए कि इन चीज़ों में ये बता दिया जा रहा है कि ख्वाहिशों को एक साइड पर करो तो तुम्हें अल्लाह की बात बड़ी जल्दी समझ आएगी। और इसी तरह अल्लाह ताला ही सारी कायनात का मालिक और मुख्तार है। हिदायत पर वो है जो इसकी राह पर हो और गुमराह वो है जो इसकी राह से हटा हुआ हो। तो अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ही प्यारी बातें समझा दी हम सबको कि वही की रोशनी में ज़िंदगियां गुजारो। इस सूरत में से जो आयत आपके लिए चूज़ की गई वो है हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत। 3-4 आयत में वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। इस पर मज़ीद गौर कर लीजिए। आज से लिखिए मैंने वही के हट से हट के कोई बात नहीं करनी, खिलाफ़ हकीकत बात नहीं करनी, खिलाफ़ हकीकत बात सुननी नहीं है, कोई ऐसा मसला अपने से घड़ कर लोगों को नहीं बता देना जो कुरान और सुन्नत में नहीं है। और बिलफर्ज अगर अल्लाह ने आपको इबलाग के काम के लिए चुना, आप मुबल्लिग हैं मुबल्लिगा हैं, फिर तो इसकी बड़ी अहमियत है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं जो मर्जी सुना दो, फ़ायदा ही होगा ना, ज़ईफ़ रिवायतें बोल दो, मन घड़त बातें बोल दो, बनी इसराइली रिवायतें कर दो, किससे कहानियाँ सुना दो लोगों के, क्यों लोग फ़ायदा ही होगा ना। देखो ना लोग नमाज़ें शुरू करते हैं। याद रखिए अबू बकर सिद्दीक नबी की ऐसी कोई बात सुन के ईमान नहीं लाए, उमर उस्मान अली और जितने भी सहाबा अल्लाह के नबी के गिरते थे वो किस तरह की कच्ची पक्की बातों से ईमान नहीं लाए। हक बोलिए, थोड़ा बोलिए, सीधा बोलिए, ना लह दर लच्छे दर बात कीजिए, हक में बड़ी कशिश होती है। ये एक बहुत बड़ा शोशा शैतान की तरफ से होता है दीन की बात करने वालों को कि ज़्यादा को खुश करो, थोड़ा ये भी डाल लो, एंटरटेनमेंट भी डाल लो, ये कर लो वो कर लो। तो याद रखिए फिर जूस तो असली ही है, प्योर जूस खट्टा लगता है, तो फिर आप पानी और चीनी मिला पिए बड़ा मीठा लगेगा, लेकिन आपका वेट गेन होगा, आपकी हेल्थ ख़राब होगी। तो मीठे जूस जिसमें चीनी के ढेर डालें उसमें और प्योर जूस को सामने रखिए, यही तबलीग का अंदाज़ होना चाहिए। बात सीधी कीजिए और खरी कीजिए, नहीं मानता कोई तो फिर ना माने, हमें क्या, अपना नुकसान करेगा। प्योर जूस छोड़ के चीनी वाला पीना चाहते हैं तो शौक से पिए। आज दीन को इस चीज़ ने बहुत नुकसान दिया, लोग इन चीज़ों में पढ़कर लोगों को तो जमा कर लेते हैं, वो मजमे तो इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन जब जवाबदेही होगी उस वक़्त जवाब देना पड़ा तो पीछे लग जाएंगे कि अल्लाह के बंदो तुमने क्या दीन को खेल तमाशा बना लिया था। फिर इसी तरह से आप देखिए कि सूरत कमर शुरू होती है आगे, इक़्तरबतिस सातु वन्शक्क़ल कमर, क़यामत करीब आ गई और चाँद जो है वो फट गया, अल्लाह के नबी के एक मौजज़े की तरफ इशारा है। लोगों ने खुली आंखों से देखा फिर नवा ने, हैरत की बात नहीं, यानी मौजज़े मांगते रहते थे और अल्लाह ने एक मौजज़ा दिखा दिया नबी के कहने पे, लेकिन क्या पता चला, जो लोग खुली निशानियां देखकर ईमान नहीं लाते वो इसी वक्त मानेंगे जब क़यामत फिल वाक़े बरपा हो जाएगी। उस दिन भी लोगों को लगना है ये कोई आंखें बंधी हुई हैं हमारी और ऐसा है और वैसा है। इसी तरह गुज़श्ता अक़वाम की तबाही और बर्बादी को बतौर इबरत पेश किया जा रहा है, खबरदार किया जा रहा है कि कुरान को जुटलाने का क्या अंजाम हुआ। पिछलों के हाल से तुम नसीहत ले लो कि कल उनके साथ ये हुआ तो आज तुम्हारे साथ फिर क्या होगा। कुफारे मक्का को खबरदार किया जा रहा है कि अगर तुमने वही रविश इख्तियार की जिस पर अक़वाम में पिछली कौमों को सजाएं दी जा चुकी तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा। और इसी तरह अल्लाह ताला को क़यामत लाने के लिए किसी बड़ी तैयारी की ज़रूरत नहीं। और बार बार इस सूरत में जो आयत आ रही है वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआना लिज़्ज़िक्री फ़हल मिन मुद्दक्किर, और बेशक हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया। आयत नंबर 17 ले लीजिए, कुरान नसीहत के लिए आसान है, इस पे गौर कीजिए। देखिए कुरान से फ़ायदा उठाने के मुख्तलिफ दर्जे हैं, उसमें एक तज़क्कुर का दर्जा है, एक तदब्बुर का दर्जा है। इसी तरह पढ़ने का है, समझने का है। तज़क्कुर क्या होता है कि अपने लिए गाइडलाइन लेना, ज़क्र यज़्कुरु ज़क्र युज़्क्किरु, भूली हुई बात को याद दिलाने के लिए आता है। अनपढ़, चिट्टा अनपढ़, बूढ़ा, छोटा बच्चा, बड़ा, 4-6 डिफरेंट टाइप के लोगों को जमा कर दीजिए और आप शुरू कर दें कुरान की बात करना। यकीन करें हर बंदा अपने हालात और अपने एज ग्रुप के नाते से उसमें से नसीहत लेगा। ये मुझसे किसी और में नहीं होता और मैं खुद हैरान होती हूँ जब क्लासेस ली जाती हैं तो मोस्टली तो क्लासेस अब ऑर्गेनाइज्ड हैं कि ये टीन एजर्स की क्लास है, ये बच्चों की, जैसे इस वक्त भी अब कई माशाल्लाह कोर्सेज अनाउंस हुए नूरुल कुरान के प्लेटफॉर्म से, 18 के क्लासेस ये हैं, बच्चों की ये हैं, उर्दू की है, इंग्लिश की क्या है, लेकिन मैं उस क्लास की बात करती हूँ जिसमें मोमेंट मैं खुद लाइव टीच करती हूँ। यकीन करिए 70 ईयर्स की ओल्ड बेजी भी वहाँ बैठी होती हैं और 12 से 14 16 साल की यंग टीनेजर बच्चियाँ भी बैठी होती हैं। एक ही सबक में पढ़ाती हूँ, तफसीर के कोर्स की बात कर रही हूँ, सवीलुल जन्ना, और हर बंदे को इतना उतना ही समझ आ रहा होता है जितना वाकई उसको समझ आना चाहिए। किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि आप तो बूढ़ों वाली तफसीर कराती हैं, और बूढ़ों ने आके ये नहीं कहा कि आप तो बड़ी जवानों वाली बातें बताती हैं। ये है कुरान का मौजज़ा जिसको आप कहते हैं फिट टू ऑल।